وآمنوا اور ایمان لے آؤ بما انزلت مصدقا لما معاکم، ایمان لے آؤ کس پر؟ اس پر جو میں نے نازل کی، کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن، قرآن پر ایمان لے آؤ، یہ کیا ہے؟ مصدقن، یہ تصدیق کرنے والی ہے، یہ کتاب تصدیق کرتی ہے کس کی؟ لما معاکم، جو تمہارے پاس ہے. آپ دیکھیں قرآن پاک میں، خاص طور پہ آپ سورہ مائدہ نکال کے دیکھیں کتنی جگہ پہ یہ باتیں ہیں کہ ان کو ہم نے یہ کہا، ان کو ہم نے یہ چیز، یہ حکم دیا، یہ حکم دیا. وہ ان کی تورات میں بھی موجود ہے، قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے. مثلا مثال کے طور پہ یہ جو بات ہے کہ کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، یہ بتایا گیا یہ تورات میں ہے، تو قرآن نے کنفرم کیا اس چیز کو، تو یہ کنفرمیشن دیتی ہے. یہ کوئی ایسی، یہ نبی کوئی ایسی کتاب تو نہیں لے کر آئے، کوئی ایسا کلام تو نہیں لے کر آئے جو کہے کہ تورات بھی غلط ہے اور سب غلط ہیں اور کوئی اللہ کی طرف سے نہیں ہے اور اس کے اپوزٹ کہیں بات کرے. نہیں، یہ قرآن تو بلکہ کنفرم کرتا ہے، تو تمہیں تو اس کو ماننا چاہیے. جو تمہاری کتاب میں باتیں ہیں اسی کو تو کنفرمیشن کر رہا ہے، اور جو تمہاری کتاب کے اندر رسول کا ذکر ہے اسی کو تو کنفرم کرتا ہے، پھر کیوں نہیں مانتے اس کو؟ پھر آپ دیکھیں یہ والی جو بات ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے گویا پوری انسانیت کو، نا حق جس نے قتل کر دیا گویا پوری انسانیت کو قتل کیا. جس نے ایک کو زندگی دی پوری انسانیت کو زندگی دی، ہم کہتے ہیں قرآن میں، لیکن قرآن میں کیا ہے یہ بات؟ کہ یہ ان کی تورات میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، ان کے اوپر یہ بات کر دی تھی فرض. دیکھو اس طرح ہے کہ جو تم ایک بندے کی بھی جان لو گے تو پوری انسانیت کو مار دینا ہے. تو قرآن تو کنفرمیشن دیتا ہے، تم اسی کی مخالفت میں لگ گئے، یہ تو تمہاری ہی بات کرتا ہے، تمہاری بک کی بات کرتا ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، نہ تم پہلے کافر ہو جاؤ، پہلے انکار کرنے والے تم نہ بن جاؤ. یعنی ایک طرف تو وہ لوگ ہیں نا جن کو ان پڑھ سمجھا جاتا ہے، جو کہا جاتا ہے یہ تو امی لوگ ہیں جو مشرکین مکہ، تو تمہیں تو چاہیے کہ تم سب سے پہلے آ کے ایمان لے کر آؤ کہ بھئی یہ تو ہماری. اب میں نے جیسے آپ کو مثال کیا تھی کہ دو لوگ ہیں، ایک مشرک ہے ایک کوئی ہندو ہے، مثلا بتوں کو پوجنے والا ہے، دوسری طرف ایک یہودی یا کرسچن ہے. آپ کو زیادہ کیا لگتا ہے کون میری بات سمجھے گا؟ آپ کو لگتا ہے نا جو اہل کتاب ہے وہ سمجھے گا. تو اسی طرح کا آ گیا، وہ تو ان کو پاس تو یہ باتیں ہیں ہی نہیں، ان کو تو ان کا پتا ہی نہیں. تمہیں تو پتا ہے آلریڈی، تمہیں، تم بھی پہلے کافر بن گئے. یعنی سب سے پہلے تو تمہیں ایمان لانا چاہیے تھا، تم سب سے پہلے کفر کرنے والے بن گئے. دوسرا یہ بھی مطلب ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ علماء یہود کے لیے یہ آیتیں خاص طور پہ ہیں کہ تم پہلے کافر نہ بنو، کیونکہ اگر یہ ایمان لے کر آتے تو ایک تو ان کی پوری جو یہودی قوم تھی وہ ایمان لے کر آ جاتی. تین قبیلے تھے مدینہ میں یہود کے، وہ سارے ایمان لے آتے اگر علماء ایمان لاتے. نمبر ٹو، عرب بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہیں جو کتاب والے ہیں، یہ ہیں جو علم والے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، جبھی تو جا کے وہ مشورے کرتے تھے ان سے. تو تم ہی سب سے پہلے کافر بن گئے، تو پہلے کافر نہ بنو. سب سے تم ایمان لاؤ گے تو تمہارے پیچھے کتنے لوگ ایمان لائیں گے؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ سب سے پہلے کسی برائی کا آغاز کرتے ہیں، سب سے پہلے کوئی گناہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے اگر جتنے لوگ وہ گناہ کر رہے ہیں تو ان سب کا وبال اس بندے پہ جاتا ہے جو پہلا ہے. تم پہلے کافر بنو گے تو تمہارے پیچھے کتنے لوگ کفر کریں گے، ان سب کا بھی وبال تمہارے اوپر آئے گا. تو سبب نہیں بننا چاہیے کسی بھی گناہ کے آغاز کا. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، نہ بیچو میری آیات کو تھوڑی قیمت پر. یہ نہیں تھا کہ وہ تورات کو لے جا کے بازار میں بیچتے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ تورات کے تعلیمات کو کیسے بیچتے تھے، فتوے ایسے دیتے تھے جس سے کہ ان کے دنیاوی فائدے ملے ان کو، جس سے کہ ان کو یہاں پہ کوئی نہ کوئی سہولیات ملے، یہاں پہ کوئی نذرانے مل جائیں. مثلا ہے کہ تورات میں اگر رجم کی آیت ہے، رجم کہا گیا ہے کہ جو شادی شدہ ہو اس کو رجم کیا جائے، تو اب کیا ہے، اس کو چھپا لیں گے، اس کو ٹویسٹ کر دیں گے، کچھ نہ کچھ بات اس سے نکال لیں گے، کوئی لوپ ہولز نکال دیں گے، کچھ ایسا کر دیں گے کہ ان کی پسند کا فتویٰ دے دیں، کیونکہ ایک امیر عورت نے زنا کر دی. अब जाहिर है जब उनके मुताबिक फतवा देंगे तो वो नजराने भी देंगे, वो शाबाशी भी इनको देंगे, वो इन्हीं को फॉलो करेंगे, वो कहेंगे यही आलिम है जो हम तो इन्हीं को बस फॉलो करते हैं। क्यों फॉलो करते हैं उनको? असल में होता यह है कि जहां पे हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक कोई आलिम बोल रहा हो ना, वो फिर हमें बड़ा अच्छा लगता है, हम कहते हैं बस हम इसी को फॉलो करेंगे, ये नहीं हम देखते कि हक क्या है। हमारी फॉलोइंग, हमारी सारी जो फेवरेटिज्म है, पसंदीदगी है, वो उन आलिम के लिए हो जाती है। क्यों? इसलिए कि वो तो हिजाब का नहीं कहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं मिक्स गैदरिंग भी सही है, मिक्स सारों का बैठना, कोई सेग्रीगेशन की जरूरत नहीं है, सारे बस इस तरह ही बैठो ये, और कोई हिजाब की जरूरत भी नहीं है। वो तो सूद को भी कह देते हैं कि वो आप ले सकते हैं, वो उस जमाने का था जो कि पुराना जमाना हो गया, अब सूद हलाल है, तो वो तो इस तरह से भी कहते हैं, तो वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? इसलिए वो हमारी ख्वाहिशात की बात करते हैं, है ना, तो उनकी तो फॉलोइंग ज्यादा हो गई ना फिर। और जब जाहिर है फॉलोइंग होगी तो वो लोगों की तरफ से तारीफ भी होगी, उन लोगों में वाहवाह भी होगी, उन लोगों की तरफ से नजराने भी होंगे, उस बंदे की फॉलोइंग भी बढ़ जाएगी, तो उसको कितना फायदा मिला। इस फायदे को कहा गया, ये क्या है? समनन कलीला, तो बहुत थोड़ी कीमत तुम बेच रहे हो अल्लाह की आयतों को थोड़ी कीमत पे। और आज भी हैं ऐसे लोग, ये उलमाए यहूद नहीं है सिर्फ, उलमाए उम्मत मुस्लिमा भी ऐसी हैं कई, जो हक बात को नहीं देखते। वो कहते हैं अगर हमने ये बातें की ना तो मस्जिद में, जाहिर है हम पेड हैं, हमें पे किया जाता है, सैलरी मिलती है, मस्जिद की एडमिनिस्ट्रेशन कह देती है आपने इस बात के ऊपर खुतबा नहीं देना, क्योंकि हमारे बड़े बड़े डोनर्स आ रहे हैं, वो हमें बहुत डोनेशन देते हैं, आपने अगर इस बात के ऊपर खुतबा दे दिया, वो तो सारे यही काम करते, तो वो तो फिर बड़े नाराज हो जाएंगे। तो वो कहते हैं हाँ नहीं नहीं ठीक है, क्योंकि समन कलीला जो सैलरी मिलती है वो तो मेरा तो घर चलता है ना इससे, तो कहीं पैसों की बात है, कहीं फॉलोइंग की बात है, कहीं और। देखें अगर मैंने इनको ये कहा कि नहीं भाई ये तो सही चीज नहीं है, तो फिर क्या होगा, ये तो नाराज हो जाएंगे, इनको कह दिया कि शराब नहीं पीनी, शराब तो हराम है, और ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है, तो फिर वो तो मुझसे नाराज हो जाएंगे, वो तो फिर हमारी मस्जिद में कभी आएंगे नहीं, वो तो मेरे दर्स में नहीं आएंगे कभी, और दर्स में नहीं आएंगे मेरे तो लोग कम हो जाएंगे। तो इनको खुश रखो, और इनको खुश रखो ताकि ये आते रहें, और ये फिर बस हमारी बस वाह वाह होती रहे, यानी हक बात को बयान नहीं करना, उनको खुश करने के लिए कि ये खुश हो जाएं। कितनी छोटी कीमत है ना जो ली अल्लाह की आयात को बेचने के लिए, बेच दिया ना, सौदा कर लिया ना, ताकि ये खुश हो जाए, ताकि इनके मनमाने फतवे मिल जाए। आज मुझे बताएं कौन सा फतवा है जो आपको नहीं मिलता, कोई एक मुझे बता दे कौन सा फतवा है जो आपको नहीं मिलता। हर फतवा आप देख लें, आप इसीलिए लोग बड़ा पसंद करते हैं कि हम दीन कोई जरूरत नहीं है हम आके किसी क्लास में सीखें, हम तो यूट्यूब से ही सीख लेते हैं, यूट्यूब में डाला ये चीज जायज है कि नाजायज है, कोई कहेगा जायज है कोई नाजायज कहेगा, जो कहेगा कि हाँ ये ठीक है वो बस ये अच्छा है इसको हम मानते हैं। तो आजकल तो दीन यूट्यूब से लिया जा रहा है ना, गूगल आपको बताएगा कि क्या करना है। तो हर तरह का फतवा मिल जाता है, सूद के हलाल होने का भी फतवा मिल जाता है, गाना बजाना हलाल होने का भी मिल जाता है, शराब के हलाल होने का भी मिल, वो तो वो जमाने की शराब थी, आज की शराब थोड़ी, और फिर इतनी पी लें जिससे नशा ना आए तो फिर वो तो सही है। तो फतवे बताएं कौन सा नहीं मिलता। जो ऐसे फतवे देने वाले हैं जो अल्लाह की आयात में लूपहोल्स निकाल के और फिर उसको बेचते हैं थोड़ी कीमत, ये थोड़ी ही तो है, पूरी दुनिया भी, उलमा कहते हैं पूरी दुनिया भी किसी को मिल जाए, ये तो खैर बहुत ही थोड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया भी बिलफर्ज किसी को दे दी जाए कि आप ये फतवा दे दें और पूरी दुनिया आपको मिल जाएगी, तो तब भी वो समनन कलीला ही है। ये नहीं है मतलब कि अगर भारी कीमत मिले फिर बेशक बेच देना अल्लाह की आयात को, समनन कलीला पे ना बेचना, ये नहीं कहा जा रहा, बल्कि कहा जा रहा है पूरी दुनिया समनन कलीला है, तुम अल्लाह की आयात को दुनिया के बदले भी, पूरी दुनिया के बदले भी बेच देते हो, तो वो भी तुमने बड़ा सस्ता सौदा किया, क्योंकि अल्लाह की आयात का तो बहुत बड़ा मकाम है, इतनी घटिया चीज के लिए तुमने बेच दिया इनको। लेकिन आज बाज उलमा सिर्फ अपने फिरके को प्रमोट करने के लिए उलट पुलट आयतों के मतलब निकाल के, यहां से देखें ये तो दलील निकलती है ना। इसीलिए आपको कहा जाता है खुद सीखो कुरान, खुद पढ़ो कुरान, खुद समझो कुरान, यानी आप खुद आए बजाय इसके कि बस हमने पढ़ना सीखना तो कुछ नहीं है, बस रमजान जब आता है तो किसी आलिम आवे, क्रेडिट कार्ड पे लेना हलाल है कि हराम है, मैकडोनल्ड से खाना हलाल है कि हराम है, इस किस्म के क्वेश्चन उस दिन के लिए रखे होते हैं, बस उसके बाद को उसके बाद पता ही नहीं कि हम कहाँ हैं। जिसने जो बता दिया बस, जिसने हलाल कर दिया तो बहुत अच्छा है। देखिए ये नई चीज होती, खुद दीन को सीखें, खुद समझें अल्लाह की किताब को। हाँ अंधे बन के रहना कोई चॉइस नहीं है। तो वो तो सामान कलीला पे बेच देते थे, तो क्या जब, अच्छा ये बताएं कि अगर कोई बेच भी देता है, क्या जो फॉलो करने वाला है उसका जिम्मा खत्म हो जाता? नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लिए भी फरमाया था कि मेरे सामने अगर तुम लोग दो झगड़ा लेकर आते हो, मैं अपने अल्फाज में आपको यह हदीस बता रहे हैं, दो लोग झगड़ा लेकर आते हो, एक चर्ब जुबान है वो किसी तरह मुझे कायल कर लेता है और मैं उसके हक में फैसला दे देता हूँ और उसका हक नहीं बनता, वो जालिम है, तो समझ लो कि मैं उसको आग का अंगारा दे रहा हूं, यानी वो बच नहीं जाएगा फिर, वो बच नहीं जाएगा कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला दे दिया तो बस अब तो मेरे लिए हलाल हो गया ना। नहीं, वो तो आप जो हकायक उसके सामने लेकर गए उसने उसके मुताबिक आपको फैसला बता दिया। अब आप किसी टीचर से पूछने जाते हैं, आप कहते हैं भाई ऐसे, अब भाई विरासत के अंदर ये मसाइल आ गए हैं, देखिए अगर ऐसे हो तो फिर क्या है, अगर फलां इजाजत दे दे मुझे ये लेने का तो फिर क्या है। अब वो तो बेचारा वो ही बोलेगा ना जिस तरह से आपने उसको सिचुएशन और स्टोरी बताई है। अब आप स्टोरी अपने मुताबिक की करके बता दें तो वो उस तरह ही दे, हाँ हमें तो हमने फतवा ले लिया, हमें तो फलां आलिम ने फतवा दे दिया, अब बस ठीक हो गया, हमारे लिए जायज हो गया। नहीं, वो चीज जायज नहीं हो जाती, चाहे कोई आलिम फतवा दे दे, चाहे कोई मुफ्ती फतवा दे दे। तो वो लोग तो ऐसे करते थे कि तो बदल ही देते थे, यानी बातों को ऐसा हेर फेर करते थे सिर्फ इसलिए ताकि हमारा फायदा हो जाए, हमसे ये दुनिया की दौलतें और ये जा और ये चीजें ना छिन जाए, तो वो निकाल ही लेते थे, कोई निकालना कौन सा मुश्किल है। जब आवाम जो है वो अंधी हो तो अंधे को तो आप जो भी बता देंगे उसने तो समझना ये ठीक ही है ना। ऐसे जब हम अंधे रहते हैं, हमें ना कोई अल्लाह की किताब का पता, ना कोई हदीस का इल्म है, कुछ नहीं पता, बस आलिम के सामने बैठ के अच्छा बताएं इसके बारे में, अब वो जो बता देगा, हमें तो यही समझ है ना, बस उसने बता दिया, तो अंधे बन के मत रहे। तो वो क्या करते थे, सामान कलीला पे बेच देते थे, कितना घटिया सौदा किया, कितना, और ये कितना आम है और इस चीज को नहीं सोचते कि देखो कुरान के अंदर ये आया उलमा यहूद के लिए, आज यही काम हो रहे हैं कि फतवे बेचे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग खुश हो जाए हमसे, लोग हमारे फॉलोअर बन जाए, हमारे स्टूडेंट बन जाए, हमें मान जाए कि ये बहुत बड़े आलिम है। वह या फत्तकून, बस मेरे से सिर्फ डरो, फिर कहा गया, यानी तकवा जब आएगा ना इंसान के अंदर, तकवा आएगा, अल्लाह का डर ही ऐसी चीज है कि फिर उसके बाद ही इंसान हक बात कह सकता है। फिर इंसान कहता है मुझे किसी का डर नहीं है, जाते हैं तो जाएं, मुझे तो हक बात कहनी है, मुझे नहीं इस चीज का डर है कि ये मेरे फैन बनते हैं या नहीं, मेरे फॉलोअर बनते हैं या नहीं, मेरे मुझे कितने नजराने देते हैं, आई डोंट केयर। ये या फत्तकून वला तलबिसुल हक बिल बातिल, और ना तुम मिलाओ, गडमड ना करो हक और बातिल को। अब देखें इनके बारे में आता है कि जुबाने ट्विस्ट करके ऐसे बात कहते थे कि जैसे ये भी तौरात में लिखी हुई है, हालांकि उसमें नहीं लिखी होती थी। बाज लोग ऐसे एक लय के अंदर पढ़ने शुरू जाते हैं जैसे कि ये कुरान की आयतें ही पढ़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी अपनी बात होती है, और दूसरा समझते हैं जब तिलावत के अंदाज में पढ़ रहे हैं शायद ये कुरान में ही लिखा हुआ है, तो गड़मट कर देते थे, ऐसे मिक्सअप कर देते थे, यानी हक के ऊपर बातिल का लिबास, तलबीस हुआ ना, बातिल का लिबास पहना देते। ये एक तरीका था, या तो बिल्कुल हक को छुपा लेते थे, आगे है ना वह तख्तुमुल हक, और ना तुम छुपाओ हक को, आपको बिल्कुल ही छुपा देते थे, या ऐसा गड़बड़ कर देते कि दूसरा कंफ्यूज ही हो जाए, उसको समझ ही ना आए कि इसमें से सही बात क्या थी। आप बाज लोगों से आप पूछें कोई सवाल, अब उन्होंने चूंकि उनके फिरके की उसके अंदर निगेशन हो रही होती है, वो सही बात का जवाब ही नहीं देंगे, गोलमोल ऐसा करेंगे कि इंसान को लॉस्ट ही हो जाए। तो हक बात करो, जो बात सही है, जबकि वो जानते थे, वह अंतुम तालमून, या तो हो ना कि पता ही नहीं है, तुम्हें पता है, तुम जानते हो, फिर जानबूझ के हक को छुपाते हो। और बाज दफा ये होता है कि उनको ये पता होता है कि बस ये हमारा फिरका है, हमने इसमें लोगों को लेकर आना है, और इस फिरके के लिए मुझे ये बात करनी है, मेरे फिरके में तो ये कहा जाता है। अब बात चाहे हक बात सामने है, समझ आ रही है, हदीस सामने है, फिर भी उसको ऐसा माना पहनाएंगे या लोगों को ऐसी बात बता देंगे, नहीं नहीं ये तो ऐसे हदीस है, नहीं नहीं ये तो ऐसे, ताकि लोगों को बेवकूफ बना के और बस इनको अपने फिरके की तरफ किया जाए। ऐसी ऐसी, अल्लाह ताला माफ करे, ऐसी ऐसी दलीलें कुरान से ही निकाल देते हुए ना, युदिल्लु बिही कथीरा वाली बात, इसी कुरान से लोग गुमराह होते हैं, इसी में से ऐसी सी बातें निकाल के और अपने फिरके को प्रमोट करेंगे। देखो ये इसकी दलील है, ये देखो ये यहाँ पे ये लिखा है ना, ये दलील है। हालांकि कुरान वाजे है, हदीस वाजे है, और तुम तो जानते हो, तुम इल्म रखते हो, यानी इल्म के बाद इस तरह के काम करना ये बहुत बड़ा गुनाह है। इल्म के बाद हक को छुपाना, आपको बात पता है, समझ है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि नहीं जी हम तो फलां फिरके से हैं, हम तो वो ही मानेंगे जो हमारे इमाम कहते हैं, अब बात समझ भी आ गई है, फिर भी बस नहीं जी हमने तो नहीं ये फॉलो करना, वो दिखाया जाता है। देखो भाई ये देखो हदीस सामने है तुम्हारे, ये देखो कुरान की आयत तुम्हारे सामने है, तुम क्यों नहीं मानते, नहीं हमने अपने इमाम को ही माना, हम तुम तालमून, तुम इल्म रखते हो। उनको भी कहा गया, आज हमारे लिए भी यही चीज है कि इल्म रख के उसके बाद हक और बातिल को गड़मड़ कर देना, हक है आपको पता है लेकिन ऐसे उसको छुपा देना, ये इल्म आने के बाद ज्यादा बड़ा गुनाह है, ज्यादा बड़ा गुनाह है। देखिए इल्म आने के बाद तो होना क्या चाहिए कि इंसान हक को बयान करे ना, हक बात करे, जब इंसान ये काम करता है तो उसकी पूछ ज्यादा है, उसकी पकड़ ज्यादा है। व अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, और उनसे कहा गया तुम कायम करो नमाज को और अदा करो जकात को, वरकाउ मअर्राकीन, उनमें भी नमाज और जकात थी, ठीक है, लेकिन उनकी नमाजें कितनी थी, मूसा अलैहिस्सलाम के पास जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे मिले थे तो क्या उन्होंने फरमाया था कि मेरी उम्मत पे दो नमाजें फर्ज थी, उनसे वो भी नहीं पढ़ी। उनसे कहा जा रहा है कायम करो नमाज पे, पहला मुतालबा उनसे क्या किया गया, ईमान लाओ, ईमान लाओ इस कुरान पे, कुरान पे ईमान लाने का मतलब है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना। और फिर उसके बाद कुछ कहा गया, डोंट्स दिए गए, कुछ डूज हैं कुछ डोंट्स हैं, क्या ना करो, अव्वल काफिर ना बनो, अल्लाह की आयतों को ना बेचो, अल्लाह की आयतों में गड़मड़ ना करो, हक को ना छुपाओ। और फिर अब डूज दोबारा आ गए, नमाज। आपको पता है मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह ताला के पास बात करने के लिए जब नबूवत उनको मिली थी तब भी इसी किस्म की इंस्ट्रक्शंस थी उनको कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, तो नमाज अल्लाह की याद के लिए, और जकात अदा करो। जब जकात इंसान देता है उससे क्या होता है, उससे भी माल की मोहब्बत कम होती है, ठीक है, माल की मोहब्बत कम होती है। और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, यानी रुकू करने वाले कौन थे, आपको पता है यहूदियों के अंदर हमारे जैसा सजदा नहीं है, आई मीन रुकू नहीं है, वो रुकू क्या करते हैं, वो जरा सा बस आगे को होते हैं, बस यही है उनका, उनकी नमाज में जो हमारी जैसी पोजीशन है रुकू वाली वो नहीं थी। अब कहा गया उनको वरकाउ मार राकेईन, राकेईन कौन है, मुसलमान उम्मत मुस्लिमा रुकू करने वाली, यानी उनको ज्वाइन कर लो, इसमें ये इशारा मिलता है, मुसलमान हो जाओ, उनके साथ मिलके नमाजें पढ़ो, ठीक है। अतामुरून नास बिल बिरी व तनसौना अनफुसकुम, तुम लोगों को तो हुक्म देते हो नेकी का और तुम अपने आप को भूल जाते हो, वह अंतुम तत्लूनल किताब, हालांकि तुम तो किताब पढ़ते हो। ये बड़ा आसान होता है ना लोगों को नसीहतें करना, लेक्चर देना, ये करो वो करो, झूठ नहीं बोलो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह का डर नहीं है तुम्हारे अंदर, और खुद की जिंदगी देखें तो कुछ भी नहीं है, खुद के अमल में देखें तो ना कोई खुदा खौफी है ना कोई नमाज है। लोगों को बहुत नमाजों के ऊपर लेक्चर दे देना, लोगों को खड़े होके कह रहे हैं, फंड रेजिंग कर रहे हैं, भाई इतनी हदीसें सुना रहे हैं, कुरान की आयतें सुना रहे हैं, देखो कितनी फजीलत है खर्च करने की, अल्लाह के रास्ते में दो, और खुद अपनी जेब से एक पैसा भी ना निकालना। तो तुम लोगों को नेकियों का हुक्म देते हो, खुद अपने आप को भूल जाते हो। ये अल्लाह ताला के हाँ बहुत ही यानी नाराज करने वाली बात है कि इंसान, आगे सूरह सफ में भी आएगा कि इंसान क्या करता है, जबकि वो लोगों को तो नसीहतें बहुत करता है लेकिन खुद अपने आप को भूल जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे ये मकसद नहीं है कि लोगों को कोई नेकी की बात ही ना बताएं। हम नहीं लोगों को नेकी की बात बताते। बाज लोग कहते हैं हम नहीं इसलिए बताते क्योंकि हम तो खुद अमल नहीं करते, तो हम क्या बताएं, हम क्या किसी को नमाज पढ़ने का कहें क्योंकि हम तो खुद ही नहीं नमाज पढ़ते। देखें, यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि आप किसी को नेकी की बात नहीं बता सकते। नेकी की बात आप बता सकते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आप दूसरों को तो नेकी की बात बताते हो, खुद सबसे पहले अपने ऊपर करनी चाहिए, लेकिन आप खुद नहीं करते। समझ आई ये बात? समझ आई? इसमें फर्क है। एक है नेकी करना, ठीक है, एक है नेकी करना खुद, और एक है लोगों को बताना। ये दो डिफरेंट काम है। जिस वक्त आप इनको साथ गड़बड़ कर देते हैं तो फिर प्रॉब्लम होती है ना। एक है खुद नेकी करना, यानी इंसान खुद अपने ऊपर वो चीज को लागू करे। दूसरा है काम दूसरों को कहना, दूसरों को बताना। अब क्या होगा जब इंसान खुद करता है, तो फिर दूसरों को जब वो बताएगा तो उसकी जुबान के अंदर असर अल्लाह ताला पैदा कर देते हैं। जब इंसान खुद करता है, नहीं करता और दूसरों को बताने लगता है, तो उसकी जुबान में असर खत्म हो जाता है। उसकी वो कितना भी लोगों को समझाता रहे, नसीहतें करता रहे, लोगों को कोई नहीं उसकी बात का असर होता। यहां पे कंडेम किसको किया जा रहा है? इसको नहीं कि तुम लोगों को क्यों बताते हो, इसको किया जा रहा है कि तुम खुद क्यों नहीं करते, जबकि तुम्हें खुद पता है ना। जब आप किसी को कन्विंस कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके अपने कान सुन रहे हैं, तो खुद क्यों नहीं करते वो काम, ये कहा जा रहा है। समझ आई बात? इसलिए कि कयामत के दिन ऐसे होगा कि बाज लोग जो जन्नत के अंदर होंगे, वो जहन्नुम वालों को देखेंगे तो कहेंगे, तुम जहन्नुम में कैसे चले गए? तुम तो मैं इतनी नसीहतें किया करते थे, तुम तो मैं इतना अच्छा बताया करते थे, तुम कैसे जहन्नुम में चले गए? तो वो कहेगा, मैं तुम्हें तो बताता था लेकिन मैं खुद नहीं करता था, मैं खुद नहीं करता था। तो इससे हमें पता चलता है कि गुनाह क्या है उसका, खुद ना करना। ये गुनाह नहीं कि दूसरों को क्यों बताया, ठीक है? तो ये दो अलग अलग नेकियां, एक खुद करना, ये एक अलग नेकी है, एक दूसरे को बताना, ये एक अलग नेकी है। आपने ये नेकी तो कर दी कि दूसरे को बता दिया लेकिन खुद नहीं की, इसकी सजा आपको मिल सकती है कि खुद क्यों नहीं की। इसकी सजा नहीं है कि दूसरों को क्यों बताया, ठीक है? मसलन है कि एक इंसान स्मोक करता है, सिगरेट पीता है। अब क्या वो दूसरों को कभी ना बताए कि सिगरेट ना पिया करो, ये खतरनाक है? वो कहता है, भाई मैं खुद नहीं छोड़ पा रहा लेकिन ये बहुत बुरी चीज है। वो लोगों को बता सकता है, ठीक है? अब इससे बताने से हो सकता है कभी वो खुद भी सीधे रास्ते पर आ जाए। तो बताना जरूर चाहिए, क्योंकि अगर हर इंसान ये सोचे मेरे अंदर तो अभी गुनाह है, मैं कैसे लोगों को बताऊं, अगर ये हर इंसान सोचेगा ना तो फिर क्या होगा, कोई किसी को कभी कोई नेकी की बात नहीं बता सकता। इसलिए कि हर इंसान में गुनाह होंगे, कोई इंसान पाक नहीं है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे कोई बता रही हूं बात या कुछ सिखा रही हूं कुरान का, तो क्या मैं पाक साफ हूं? नहीं, नहीं है ऐसा। हर एक इंसान में गुनाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, कुल बनी आदम खताउन है, खताकार है, कोई भी हम में से महफूज नहीं है या हम बिल्कुल पाक साफ हो गए तो आज हम दूसरों को बताने बैठ गए, नहीं। तो इंसान ये नहीं हम कह सकते कि अब हम बिल्कुल पाक साफ होंगे तब हम किसी को कोई बात बताएंगे। और लोग भी बाज दफा कहते हैं, लो पहले खुद तो कर लो फिर उसके बाद दूसरों को भी बताना। नहीं, ये बात नहीं है। आपसे नहीं भी हो पा रहा फिर भी लोगों को बताएं। लेकिन बुरी बात क्या है कि हम लोगों को तो बड़े बड़े वाज करें, तुम ऐसे नहीं करो तुम, और हमारी अपनी जिंदगियों में एक रमक भी नजर ना आए उस चीज की, वो बुरी बात है। हम लोगों को कहें अल्लाह का खौफ नहीं है, तुम लोगों को अल्लाह का खौफ करो, ये करो, और फिर जब हमारी अपनी जिंदगियां आए तो उनके अंदर हमें कोई खुदा खौफी नजर ही नहीं आती, हमारी जिंदगी में भी कोई है, ये बुरी बात है। कि खुद क्यों नहीं करते, तो खुद ना करने को कंडेम किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि दूसरों को बताने को से मना किया जा रहा है, तो दूसरों को हमेशा बताते रहना चाहिए। हाँ ये जरूर बात है कि अपने आप के ऊपर पहली तवज्जो होनी चाहिए। सबसे पहले इंसान अपने आप को खड़ा करे उन आयतों के सामने कि देखो ये ही आयतें मेरे लिए हैं। ये नहीं कि लेक्चर दूसरों के लिए तो बड़े प्रिपेयर कर लिए, दूसरों को तो ऐसे मतलब बड़े बड़े जबरदस्त दलीलें दे के और हदीसें सुना के और ये बड़ा जबरदस्त लेक्चर हुआ, लेकिन खुद के अंदर क्या है? ये कोई परफॉर्मेंस का इम्तिहान नहीं कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। परफॉर्मेंस मेरी ये है कि मेरे अमल में क्या है। हम सोचते हैं लेक्चर देना मेरी परफॉर्मेंस है, लोगों को हम बता रहे हैं उनको हमने कितना इंप्रेस कर दिया। नहीं, और एक और हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शबे मेराज मेरा गुजर कुछ लोगों पे हुआ, यानी मेराज की रात पर मेरा गुजर कुछ लोगों पे हुआ जिनके होंठ और जुबानें आग की कैंचियों से कुतरे जा रहे थे। आप सोचें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, मैं ये सोच रही थी कि कैंची से, आम कैंची से भी अगर जुबान कट जाए वो तो दूर की बात है, थोड़ी देर के लिए दांत के नीचे भी जुबान आ जाए ना तो इंसान कितनी देर सीसी करता रहता है, और कहां कैंची से काटना। और ये तो इंसान की दुनिया की कैंचियां, आग की कैंचियों से जुबाने और होंठों को काटना। तो मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा ये कौन है, जिब्राइल ने बताया ये आपकी उम्मत के दुनियादार वाइज हैं जो लोगों को तो नेकी का हुक्म बहुत देते थे लेकिन अपनी खबर नहीं लेते थे। इब्ने कसीर में रिवायत, अपनी खबर नहीं थी कुछ, अपने को परवाह ही नहीं थी, यहां पे दर्स दे के उठे, वहां पे जाके पहले रिश्तेदारों से बहुत अच्छा करना चाहिए, फिर उसके बाद गए और अपने रिश्तेदारों के साथ कोई खबर ही नहीं है कि क्या किया। मिसाल एक बता रही हूं। तो ये सब चीजें हमें खुद भी देखना है कि हम जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों को मसलन नमाज का कर नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो, खुद हमारी नमाज कुछ है ही नहीं। बच्चों को सच बोला करो, तुम सच नहीं बोलते हो, और अब अगर तुमने झूठ बोला तो मैं तुम्हारे साथ ये करूंगी, ये पनिश करूंगी, और खुद हम झूठ बोल रहे हैं। तो ये सिर्फ कोई मस्जिद में बैठ के वाज देने वाली बात नहीं है, हम जगह जगह पे देखें, जहां पे भी हम किसी को तो नेकी का हुक्म दे रहे होते हैं। अपने बच्चों तो हम चाहते हैं कि वो पैगंबर ही बन के बैठ जाए, इतने बड़े ओहदे के ऊपर वो हो जाए कि बस फरिश्ते बन जाए, वो उनसे कभी कोई गलती हो ही ना, मतलब ऐसे नेक और पारसा बन जाए, लेकिन खुद और उनको नसीहतें करने में और लेक्चर देने में हम कितने होशियार हैं। फिर असर क्यों नहीं होता, हम कहते हैं असर नहीं होता, देखो इनको इतनी दफा बताया इसलिए असर नहीं होता कि वाइज बेअमल जो होता है उसकी बात में असर नहीं होता। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। तो जो भी आगे नसीहत करें, खुद कोशिश कम से कम ये होनी चाहिए जरूर कि हम अपनी तौर पर अपने अमल के अंदर जरूर उन चीजों को लेकर आए। लोगों को हम तहज्जुद की बड़ी तरगीब देते रहे, खुद हमारा तहज्जुद का कुछ पता ही नहीं। लोगों को हम नमाज की फर्जियत बताते रहे, खुद हम फजर पे सोए पड़े रहे, ये क्या हुआ ना फिर। तामुरून नासा बिल बेरी व तनसौना अनफुसको, अपने आप को तुम भूल ही जाते हो। वह अंतुम तत्लून किताब, जबकि तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम्हें तो खुद पता है, यानी सारी चीजें तुम्हारे सामने तो क्लियर है। क्या तुम अकल से काम नहीं लेते, यहां पे नहीं कहा कि तुम इल्म नहीं लेते, इसलिए कि ये इल्म की बात नहीं, इल्म तो उनके पास बहुत था, वो तो किताब पढ़ते थे, इल्म से हिदायत नहीं आ जाया करती ना, इल्म से सिर्फ हिदायत नहीं मिलती, हिदायत तब मिलती है जब इंसान अपने दिल को खोल दे हिदायत के लिए। इल्म इनके पास, इनसे ज्यादा इल्म किसके पास था, ये तो इतने बड़े उलमा थे, इनसे ज्यादा क्या इल्म होगा किसी के पास। मगर देखो इतना इल्म हो के भी उनका क्या हाल था। और इसी सिलसिले में एक और हदीस में आता है ना, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत एक यहूदी लड़का किया करता था, तो एक दफा बड़ा सख्त बीमार हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत करने के लिए गए। जब इयादत करने के लिए गए तो देखा कि वो तो बिल्कुल यानी अब करीबन मर गया, मरने वाला है वो बच्चा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कलमे की तलकीन की कि इस्लाम ले आओ, ईमान ले आओ। उसने अपने बाप की तरफ देखा तो बाप ने कहा, अबुल कासिम जो बात कह रहे हैं ना उनकी बात को मान जाओ। तो बच्चे ने कलमा पढ़ लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि फिर वो फौत हो गया। तो आपने फरमाया कि शुक्र है अल्लाह का जिसने मेरी बदौलत इसको आग से बचा लिया। तो इसका मतलब वो जो बाप था उसको समझ थी ना, वरना अपने बेटे को क्यों कहता कि हाँ ईमान ले आओ। उसको कह दिया, खुद नहीं माना, खुद नहीं ईमान लेकर आया। देखो बाज दफा पता होता है बात का लेकिन इंसान नहीं खुद मानता। दूसरों को नसीहत करना असल में बड़ा आसान होता है, खुद अमल करना मुश्किल होता है। इस वजह से इंसान खुद नहीं करता अपने नफ्स से, हालांकि पहले यहां से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन दूसरों को कहना और दूसरों में वाहवा लेना कि बड़ी अच्छी बात की, इतने बड़ी अकल की बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, बड़ा अच्छा तरीका आपका बोलने का, ये तारीफें लेने के लिए हम बातें तो बड़ी जबरदस्त ऐसे ऐसे शोला बयानी से कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या है, अपनी भी फिक्र है कि नहीं है, ये बात है। अफला ताकिलून, अकल नहीं है, अफला तालमून क्यों नहीं कहा? इसमें यहाँ पे इल्म की जरूरत नहीं है, इल्म था तो दूसरों को बता रहा था ना। यहाँ पे अकल की जरूरत है कि सोचो, थिंक, सोचते नहीं हो। वही दर्स के ऊपर हम बैठे हुए, हम इतनी बातें कर रहे हैं और वही हम घर जाते हैं तो पता ही नहीं है कि हमने आज बोला भी क्या है। वही हमारी जुबानें, वही हमारे झगड़े, वही तकब्बुर, वही अना, वही सारा कुछ जिसके ऊपर इतने लंबे लेक्चर दे के आए होते हैं। तो क्या ये हमारे खिलाफ हुज्जत नहीं बनेगी कि तुम्हें पता था और फिर तुमने ये किया? तुम तो पढ़ते थे, इसका मतलब पढ़ने के बाद वान तुम ततलून अल किताब, तुम तो पढ़ते थे किताब को, तिलावत करते थे किताब की। किताब को पढ़ने के बाद इंसान की पूछ ज्यादा है कि तुम्हें तो पता चल गया था ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगा रहो सबसे बदतर उलमा बेअमल उलमा है, बेअमल, जिनके पास अमल नहीं है, बस मिंबरों पे खड़े होकर तकरीरें कर देना, इससे तो नहीं इंसान आलिम बन जाता। तो ये बड़ी सख्त आयत है, बहुत ये भी हमारे लिए आई ओपनिंग आयत है कि जब हम दूसरे को कह रहे हैं तो हम खुद क्या कर रहे हैं, हमारा उस वक्त खुद का क्या है। कि अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये मक्त है, अल्लाह के लिए बड़ी नाराजगी की बात है अल्लाह के हाँ ये चीज कि तुम वो जो कहते हो वो करते नहीं हो। चाहिए, पीछे एक बात रह गई, वरकाउ मार राकेईन में एक बात रह गई है, वो ये कि रुकू करने वालों के साथ रुकू करो, इसमें जमात के साथ नमाज पढ़ने का भी कहा गया। एक तो यहूद को कि तुम ईमान लाओ और मुसलमानों के साथ मिल जाओ, दूसरे ये जमात के साथ नमाज पढ़ने की अहमियत पता चलती है यहाँ पे कि नमाज पढ़ो मर्दों के लिए, औरतों के लिए नहीं। औरतों के लिए तो अफजल ये कि घर में पढ़े, लेकिन मर्दों के लिए कि वो जमात से पढ़े। एक नाबीना सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए थे और अर्ज किया था, मुस्लिम में ये रिवायत है कि मेरे साथ कोई आदमी नहीं है जो मुझे मस्जिद तक ले आए, तो आप मुझे इजाजत दें मैं घर में ही नमाज पढ़ लिया करूँ। आपने फरमाया अच्छा ठीक है। और जब वो जाने लगा तो आपने पूछा कि अजान की आवाज तुम्हारे घर तक पहुंचती है? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल्ला, अजान की आवाज तो मैं सुनता हूँ। आपने फरमाया फिर तो मस्जिद में तुम्हें आना जरूरी है। फिर आपने फरमाया फिर कोई रुख्सत नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। यानी जो इंसान अजान की आवाज खास तौर पे सुनता है वो उसके लिए तो उसके घर में नमाज होती नहीं, उसको मस्जिद आना ही आना है। तो यार ये भी देखें, आपको पता है कि जब कोई आदमी मस्जिद की तरफ जाता है नमाज के लिए तो हर कदम पे अल्लाह ताला उसके आमालनामे में नेकी लिखता है, उसका एक दर्जा बुलंद होता है, एक गुनाह माफ होता है। जितनी देर वो जाके मस्जिद में बैठा रहता है नमाज के इंतजार में, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं। कितनी बड़ी सआदत है जो इंसान यानी इसको पा सकता है मस्जिद में नमाज पढ़ने से, जमात के साथ पढ़ने से। चलो अगर मस्जिद दूर है नहीं जा सकते तो कम से कम ऐसा जरूर करें कि घर में ही जितने लोग हैं वो जमात से नमाज पढ़ लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जहां पे 3 लोग हों और वो जमात से नमाज ना पढ़े तो फिर क्या होता है, शैतान उन पे मुसल्लत हो जाता है। अलग अलग पढ़ने से बेहतर है इंसान जमात के साथ पढ़े। फिर वरका उमार राकी, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है कमांडमेंट्स, ये यहूद के लिए नहीं है सिर्फ, ये हमारे लिए भी है। वस्तईनु बिस्सब्री वस्सला, और मदद मांगो नमाज से और सबर से और नमाज से। यानी अगर आप पिछली आयत में देखें कि कहा जा रहा है कि तुम क्यों ऐसे करते हो, कुछ लोगों को तो हुक्म देते हो अपने आप को भूल जाते हो। अब इंसान कहता है कि ये बड़ा मुश्किल है मैं कैसे करूं, तो फिर मदद मांगो अल्लाह से सबर के साथ और सलात। यानी ये दो टूल्स अल्लाह ताला ने बता दिए, इनके जरिए मदद मांगो। किस चीज में मदद मांगो, इस काम में भी जो पहले बताया गया, यानी नेकी करना अगर मुश्किल लग रहा है, अपने लिए मुश्किल लग रहा है, दूसरों को कहना आसान है, अपने लिए मुश्किल लग रहा है, तो अल्लाह से मदद मांगो इनके जरिए। और वैसे भी ओपन एंडेड है कि अल्लाह से मदद मांगो साथ सबर के और नमाज के। सबर क्या चीज होती है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल किस जगह पे, हम सिर्फ सोचते हैं कि जब कोई फौत हो जाता है तो फिर कहना होता है सबर करो, और वो सबर का मकाम है। नहीं, सबर हर मुसीबत के वक्त, हर परेशानी के वक्त, हर कोई फौत होना एक बड़ी मुसीबत है, लेकिन और भी जितनी मुसीबतें हैं, जितने मसले आते हैं, जितनी परेशानियां आती हैं, उनमें सबर। सबर क्या है, उस वक्त इंसान अपने आप को कंट्रोल करे, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करना सबर है। मैं रिएक्ट कैसे करती हूँ, चीखना चिल्लाना वावेला करना। मिसाल के तौर पर किसी को कोई, अल्लाह माफ करे, ऐसी न्यूज मिल जाती है किसी के एक्सीडेंट की मिल जाती है, या अपने किसी प्यारे की कोई ऐसी बात पता चल जाती है, हस्बैंड की पता चल गई, बच्चे की किसी की पता चल गई कि कोई ऐसे गलत काम के अंदर वो है इन्वॉल्व, तो उस वक्त क्या रिएक्शन होता है, ये भी एक मुसीबत ही है ना। तो सिर्फ मरने के ऊपर सबर नहीं होता, इन सारी इस किस्म की मुसीबतों के ऊपर सबर होता है। जब आपने कोई चीज देखा कि कोई चीज आपकी टूट गई है, जो बड़ी कीमती चीज थी, या आपने तो आपको पता चला कोई चीज आपकी बहुत कीमती, कोई शर्ट था वो गुम हो गया, आपने कोई बाली पहनी हुई थी वो कोई गिर गई, अब ये सारी मुसीबतों की फॉर्म्स हैं, इनमें भी सबर, इनमें भी सेल्फ कंट्रोल। इंसान ऐसा आपे से बाहर ना होना शुरू हो जाए, चीखना चिल्लाना, गालियां देना, झगड़ा करना, किसी को बुरा भला कहना, ये इस पे ना हो जाए, ठीक है। इसी तरह सबर, दूसरा एक और भी सबर होता है, सिर्फ मुसीबत में सबर नहीं होता, गुनाहों के आगे भी सबर के साथ डट के रहना कि इंसान वो गुनाह ना करे, उस गुनाह में जाके ना जा पड़े, ये भी सबर है। यानी अपने आप को रोक लेना, सेल्फ कंट्रोल। आपका दिल चाह रहा है वो करने का, आपका दिल चाहता है कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए बड़ी टेम्पटेशन रखती हैं, वो कुछ देखना भी हो सकता है, वो कुछ पहनना भी हो सकता है, वो कुछ सुनना भी हो सकता है, वो कुछ कुछ भी कुछ चीज हो सकती है, वो टेम्पटेशन है, वो कुछ बोलना भी हो सकता है, वो कहीं जाना भी हो सकता है। अब लेकिन वो गलत है, आपको पता है वो गलत है, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल कर लेना, नहीं मैंने ये नहीं करना। अब ये जो आपने अपने आप को कंट्रोल किया ना, अपने आप को खुद बांध लिया, अपनी बागें खुद खींच ली है ना, ये भी सबर है। तो सबर वो पहली किस्म का सिर्फ सबर नहीं होता, उसको भी हम इन टोटैलिटी तो जानते ही नहीं। हम सबर सोचते हैं बस सबर है, कोई मर गया तो फिर सबर है, ये नहीं। अच्छा, तीसरा भी एक सबर होता है, और वो है नेकी के काम पे सबर। नेकी के काम में भी क्या, खुद को जमा के रखना, ये भी है ना, कंट्रोल करना अपने आप को। बेसिकली तो सबर है ही सेल्फ कंट्रोल। अब आपका दिल चाहता है कि हाँ आप क्लास को कंटिन्यू करें, आपका दिल चाहता है कि आप कुरान को पढ़ें, लेकिन अब ये काम आ गया, वो काम आ गया, आए अब क्या करूं, अब तो मेरे से होता ही नहीं, अब मेरे शौक बहुत है, लेकिन मुझे यहां पे क्या चीज की जरूरत है, सबर की। नमाज के लिए भी क्या चाहिए, सबर चाहिए कि आपने करते ही चले जाना है, आपने ये नहीं करना कि अच्छा आज किया तो कल छोड़ दिया, सबर चाहिए ना। कंट्रोल करें खुद को कि आपकी नींद बड़ी मीठी आ रही है या थकन बहुत हुई भी है, उठा नहीं जा रहा, उस वक्त अपने आप को कंट्रोल करना और कहना नहीं मैंने उठ के नमाज पढ़नी है, ये सबर है। इस तरह बहुत सारे लोग आपको ताने दे रहे हैं किसी नेकी को करने पे, कोई मुलानी कह रहा है, कोई एक्सट्रीमिस्ट कह रहा है, कोई कह रहा है तुम क्या बन गई हो, तुम क्या ये हो, उस वक्त क्या चाहिए, उस नेकी पे जमने के लिए सबर। ये नहीं कि उसी दिन छोड़ के बैठ जाए, उसने मुझे ये कह दिया, आए अब तो मैं थक बहुत गई हूं, आए अब तो मेरे से नहीं ये होता, और सुस्ती आ गई, किसी दिन कुछ कुछ और तीसरी चीज हो गई। तो ये सबर, इसमें भी सबर चाहिए। तो सबर, जब आप सबर करेंगे ना, मैंने आपको इस्तेआनत क्या बताया, देखिए इस्तेआनत ये नहीं होती कि बस खुद, मसलन आप लेटे में और कह रहे हैं पानी आ जाए मेरे मुंह में पड़ जाए, अल्लाह मेरी मदद कर, अल्लाह मुझे बड़ी प्यास लगी मुझे पानी पिला, ये नहीं है इस्तेआनत। इस्तेआनत ये है कि आप एफर्ट करें फिर अल्लाह से मदद मांगे, ठीक है। तो आपने एफर्ट किया कि आप खुद सबर करेंगे और आप खुद नमाज पढ़ेंगे तब अल्लाह की मदद आएगी, ठीक है, तब अल्लाह भी आपको थाम लेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सबर करना चाहता है अल्लाह उसको सबर दे देता है। तो अगर आप सबर अल्लाह से मांगेंगे और सबर आप करना चाहेंगे कि मैंने सबर करना है, तो अल्लाह भी आपकी मदद करेगा, अल्लाह भी आपको थाम लेगा। लेकिन आप खुद ही नहीं करना चाहते और आप कहें बस पहले सारे वाबिले कर लिए, सब कुछ कर करके फिर उसके बाद का अब तो हम सबर ही कर लेते हैं, नहीं ये नहीं होता सबर। सबर सदमे के शुरू में ही होता है, बाद में तो करार आ ही जाना होता है। जब वक्त गुजरता जाएगा तो जाहिर है वक्त बहुत बड़ा मरहम है, फिर इंसान को सबर तो आ ही जाना होता है एक दिन। शुरू में आपने क्या किया ये चीज होती है। आपने कोई भी ऐसी बात जो आपकी तबीयत को पे गरां गुजरने वाली है जो ही सुनी तो आपने क्या किया। तो सबर और सलात से जो मदद मांगो इन दो चीजों के साथ, वह इन्ना ला कबीरा तुम इल्ला अल खाशीन, बेशक ये कहा जाता है नमाज की तरफ इशारा है या दोनों की तरफ, या ये सब चीजें, हा की जमीर सब चीज, यानी लोगों को कहना और खुद ना कर रहे हैं, या फिर नमाज और जकात और ये सब चीजें, या ईमान लेकर आना, ये सब चीज, ये बहुत बड़ी चीजें और बड़ी भारी चीजें हैं। या फिर सिर्फ आप सलात भी समझ सकते हैं, मुख्तलिफ मुफसरीन ने डिफरेंट चीजें लिखी हैं कि नमाज की तरफ इशारा है या सब्र और सलात की तरफ इशारा है, ये बहुत बड़ी है मगर सिवाय उसके जो खुशू करने वाला उसके लिए भारी नहीं है। अब पता है नमाज, बाज लोगों के तो नमाज पढ़नी ही बहुत भारी है कि पांचों नमाजें कैसे पढ़े, वो उनकी वो ही नहीं पक्की हो पाती। बाज के तो नमाज तो पढ़ ली है लेकिन भारी क्या है, खुशू उसके अंदर। नमाज पढ़ ली है लेकिन नमाज कौन सी नमाज है, सलातुल अबदान है, बदन की नमाज है, सलातुल कुलूब नहीं है, दिल की नमाज नहीं है, दिल हाजिर ही नहीं, दिल को पता ही नहीं कि नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी। तो इन्ना हला कबीरा तुम इला अल खाशीन, कईयों के लिए बहुत भारी है मगर खुशू करने वालों के लिए नहीं भारी। वो कौन होते हैं खुशू करने वाले, खुशू भी, खुशू एक ऐसा जज्बा है जिसमें कि इंसान किसी की अजमत की वजह से उससे डरे, अजमत की वजह से कि वो इतनी बड़ी हस्ती है उसके आगे मैं कुछ गलत काम करूं, ये होता है खुशू, ठीक है। किसी की जैसे कि एक हैबत होना, किसी के आगे झुक जाना उसकी हैबत की वजह से, उसकी अजमत की वजह से। तो कौन होते खाशीन, अल्लदीना यदुनूना अन्नहुम मुलाकु रब्बीहिम, जिनको ये पता होता है ना कि हमें अल्लाह से मुलाकात होनी है, वो अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और हमें लौट के उसकी तरफ पलटना है, जाना है उसकी तरफ, वो खाशीन होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया उनके लिए नहीं नमाज भारी, उनके लिए नहीं सबर भारी, उनके लिए नेकियां करना नहीं भारी, बाकियों के लिए हाँ वाकई भारी है। और वाकई आप देख लें कि जब ये ईमान वीक होता है कि मुझे पलटना है अल्लाह की तरफ, मुझे एक दिन अल्लाह के सामने खड़े होना है, ये वीक होता है ना, तो फिर इंसान के लिए नमाज भी भारी, हाय फिर कैसे उठें, हाय फिर कैसे करें, ओ ये तो बड़ी मुश्किल, ओ आजकल तो नमाजें बस घंटे घंटे बाद तो नमाजें हो रही हैं, बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं पढ़ जाते, ओ सबर तो इतना ही मुश्किल है कि बस, ये नेकियां करना तो बहुत मुश्किल है, अमल बड़ा मुश्किल है, फिर सारी चीजें ही मुश्किल है। लेकिन जितना ज्यादा ये अकीदा स्ट्रोंग होगा कि मुझे अल्लाह से मुलाकात करनी है और मुलाकात में मैंने उसके आगे खड़े होना है, मैंने उसको जवाब देना है, फिर सारी चीजें ही आसान है। आप देख लें रिश्तेदारों से निभाना कोई आसान तो नहीं है ना? लेकिन जब ये चीज का यकीन हो, यकीन कहा गया यहाँ पे, यकीन ही तो मुतजलजल होता है, यकीन हो कि मुलाकात करनी है अल्लाह से और उसने पूछना है, तो फिर कैसे नहीं हम करेंगे। जब ये यकीन हो कि लौटना है, मुझे मौत आनी है, मैंने जाना है वो एक और जहान में, तो फिर कैसे नहीं करेंगे। तो प्रॉब्लम यहां पे होती है, मुलाकात का यकीन नहीं होता, मुलाकात का जिसको यकीन होता है ना, वो फिर इसकी रिहर्सल करता है। 5 दफा दिन में अल्लाह के आगे हाथ बांध के खड़ा होता है, ये उसकी रिहर्सल हो रही है कि मैंने ऐसे ही मैदान हशर में भी खड़े होना है अल्लाह के आगे, जैसे मैं आज यहाँ पे खड़ा हुआ। फिर उसको लगता है अल्लाह मुझे देख रहा है, मैं उसके आगे खड़ा हुआ हूँ। फिर खुशबू भी आता है, फिर दिल भी लगता है नमाज में, फिर वो झुकाव वाकई झुकाव होता है, फिर एक्सरसाइज नहीं होती। तो ये इनके लिए भारी नहीं है, बाकी सबके लिए भारी है। या बनी इसराइल अस्कुरू नियमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी नियमते जो मैंने इनाम किए हैं तुम्हारे ऊपर। फिर दोबारा उनको कहा गया, देखिए जैसे एक माँ नहीं कहती बच्चे को, प्यार से कहती बेटा मेरी बात सुन लो, बेटा समझ जाओ मेरी बात को, देखो मैं तुम्हारी कितनी तकलीफें उठा के तुम्हें पैदा किया, मैंने तुम्हारी परवरिश में कितनी मुशक्कत उठाई, तुम अब समझ जाओ मेरी बात। अब बार बार कहती है ना, अल्लाह ताला ने यहाँ पे दोबारा उसकी शफकत है और उसकी मेहरबानी है, बनी इसराइल याद करो मेरी नेमतें, यानी नेमतें याद करके मुझे याद करो, मेरा एहसान मानो, ताकि तुम फिर ईमान ले आओ, जो मेरी बातें कह रहा हूँ उनको पर अमल करो। अरे जब इंसान, मैंने आपको जैसे बताया, जिसने आपके ऊपर बहुत एहसान किया होता है, फिर आप उसकी बात टाल नहीं सकते। जब अल्लाह ताला अपनी नेमतें याद करा रहा है, तो मकसद यही है कि तुम अल्लाह की बात को मानो। आमीनू वहां पे कहा गया, और यहाँ पे कहा गया अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, ये तुम मेरी नेमत देखो कि मैंने तुम्हें जहान वालों पे फजीलत दी है। पूरे यानी उस वक्त के दौर में जितनी कौमें थी उन सब के ऊपर इनको फजीलत मिली। देखें, और बुत परस्त थे, कोई कोई थे, किसको पूजा करते थे, कोई किसी की, लेकिन ये तौहीद पर थे। अल्लाह ने इनके पास पैगामी हिदायत भेजा, इनको चुना, तुम्हें मैं अपने दीन के पैगाम के लिए चुनता हूं। जैसे एक, जैसे तो नहीं कह सकते मिसाल, लेकिन एक जस्ट आपको समझाने के लिए, एक प्रेसिडेंट कहे कि मैं अपना एम्बेसडर फलां को बनाता हूँ। वैसे भी एम्बेसडर बड़ी चीज होता है, लेकिन एक मुल्क का एम्बेसडर होना कितनी बड़ी बात होती है। तो वो कह दे कि मैंने अपना एम्बेसडर किसी को बनाया, ये तो बड़े ऑनर की बात होती है उसे। एक ये दुनिया के मुल्कों के एम्बेसडर हैं, किसी सदर वजीर का कोई सफीर है, एक है अल्लाह का एम्बेसडर होना, कितने बड़े ऑनर की बात है कि अल्लाह की बात को तुम आगे पहुंचाओ, पहुंचाने वाले बनो। तुम्हारे हाथ में अल्लाह ने अपना पैगाम दिया है, तुम आगे इसको लेकर निकलो, ये बहुत बड़ा ऑनर था। और फरमा दिया ये एक यूनिवर्सल रूल है जो यहाँ पे बता दिया गया, सबके लिए बता दिया गया, उनके लिए भी, क्योंकि उनको डर था हर वक्त कि वो उनका क्या होगा, वो हमारे फैन नहीं रहेंगे, हमारी फॉलोइंग खत्म हो जाएगी, हमारी कुर्सी का क्या बनेगा, हमें कौन पूछेगा, फिर हमारे पास तो कोई आया ही नहीं करेगा कोई सवाल पूछने के लिए। वो ये भी ना, वो लोगों को एजुकेट नहीं करते थे, क्योंकि किस लिए नहीं एजुकेट करते थे, अगर इन सारों को इल्म आ गया तो हमारी क्या चौधराहट रहेगी, हमसे कोई पूछने आएगा। देखिए ना, अब आप सारों को अगर इल्म हो जाए तो आपको किसी के पास क्वेश्चन नहीं करने जाने की जरूरत होगी। तो वो नहीं चाहते थे कि वो चाहते थे हमारे पर बस लोग डिपेंडेंट रहे, नहीं चाहते थे कि लोग बस हमारे हाथ से निकल के अपने अपने सबको सब पता चल जाए, और हमारा फिर हमें कौन आके पूछेगा। मसलन सारे ही निकाह पढ़ाना सीख लें, सारे ही जनाजा पढ़ाना सीख लें, तो किसी को कोई क्यों बुलाएगा। वो कहते हैं कि भाई कोई भी ना सीखे, हम ही आके करें, हमारा ही बस वो होल्ड। हमारे ये नहीं कि उनका कसूर है, हमारे लोग खुद नहीं सीखते, लेकिन कहने का मकसद ये है कि यानी कुछ चीजें हैं जो उलमा ने अपने हाथों के अंदर रखी होती ना, या इमाम है या कोई है, अब वो अगर अवामुन नास भी सीख लेंगी तो उनकी क्या अहमियत रहेगी। ठीक है, बहुत डेप्थ का नॉलेज तो उन्हीं के पास होता है, क्योंकि वो इसके एक्सपर्ट होते हैं और हर कोई नहीं वो हासिल कर सकता, लेकिन बेसिक नॉलेज तो सबके पास होना चाहिए ना, तो वो बेसिक नॉलेज भी नहीं देते थे, ताकि ये हमारे पास बस आते रहे। कहा गया वत्तकू यौमल्ला तजजी नफ्सुन अन नफ्सिन शैया। अब जब एक बात से समझाने के तरीके होते हैं ना, आप भी अपने बच्चों को जब समझाते हैं तो आप क्या प्यार मोहब्बत से भी समझाते हैं, फिर ये भी कहते हैं बट डरो उस वक्त से, अगर तुमने ये काम ना किया तो फिर तुमने मसलन पढ़ाई ना की, तो डरो उस वक्त से कि ये ना हो कि ये ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए और ऐसा हो जाए। ऐसे कहते हैं ना, तो यहाँ पे भी उनको डराया भी किया कि देखो बच्चो डरो उस दिन से जब नई काम आएगा, नई बदला बनेगा, कोई नफ्स किसी नफ्स के भी। وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَاتٌ، اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا، نہ کوئی مدد دیے جائیں گے۔ جب انسان کسی مصیبت میں، بڑی مصیبت میں پھنس جائے نا، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو انسان اپنے آپ کو خود نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر نہیں نکال سکے تو کیا کرتا ہے؟ پھر ادھر ادھر دیکھتا ہے، کون ہے جو میری ہیلپ کر سکتا ہے، چاہے مجھے اس کے پاس جا کے پیسے دے کے مدد لینی پڑے، چاہے مجھے اس کی منتیں کرنی پڑے، چاہے مجھے اس کے پیر پکڑنے پڑے، چاہے مجھے اس کی خوش آمدیں کرنی پڑے، کہیں سے میں ہیلپ لوں، چاہے مجھے اپنے آپ کانٹیکٹس کو یوز کرنے پڑے۔ یہی چیزیں ہوتی ہیں جب انسان مصیبت میں پڑتا ہے۔ قیامت کا دن بہت بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ اللہ نے اسے ڈرایا ہے قرآن میں، اللہ نے فقر و فاقے سے نہیں ڈرایا کہ ڈرو فقر و فاقے سے، یہ نہ ہو ایک دن تمہیں روٹی نہ ملے کھانے کو، ڈرو اس دن سے، ایسے نہیں کہا۔ ڈرو بیماریوں سے، کہیں یہ نہ ہو کہ تمہارے اوپر بیماری آ جائے، یہ نہیں کہا۔ جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں نا، ان سے نہیں ڈرایا اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن سے، مگر بہت دفعہ ڈرایا کہ ڈرو ڈرو، وہ دن بڑا مشکل دن ہے۔ کوئی نفس کسی کا بدلہ نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہیں کہے گا، کوئی ماں نہیں کہے گی مجھے لے لے اللہ، میرے بچے کو بچا لے، وہ تو کہیں گے بچے کو ڈال دے اللہ، مجھے نہ پکڑ۔ یہ خود ہی ایسے تھے، اللہ میں نے تو ان کو بڑا سمجھایا تھا۔ وہ ماں باپ بھی اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیں گے، تو کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہیں بنے گی۔ یا کوئی کہے کہ میرے تو اتنے نوکر چاکر غلام ہیں، ان کو اللہ پکڑ لے، کیونکہ میں نے ان کو اپنی جگہ دے دیا۔ جیسے دنیا میں پکڑوا دیتے ہیں نا، کام کچھ غلط مالک نے کیا ہوتا ہے، اور وہ نوکروں کو، کوئی اپنے ڈرائیور کو، کوئی کسی کو پیسے دے کے اور کہتے ہیں تم میری جگہ پہ جا کے تم مقدمے بھگتو اور تم ہی جیل چلے جاؤ، اسی نے کیا تھا، ان کے اوپر ڈال دیتے۔ وہ قیامت میں یہ نہیں ہو سکتا ہے، نہ کسی کی سفارش قبول ہوگی۔ تو پھر شفاعت کا جو ہمارے ہاں کانسیپٹ ہے، وہ کیا ہے کہ شفاعت ہے؟ دیکھیں شفاعت، ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ کوئی جس کا دل کرے گا وہ کسی کی سفارشیں کرا کے، جیسے دنیا میں الٹے سیدھے لوگوں کی سفارشیں کرا کے اور ان کو نکلوا لیا جاتا ہے جیلوں سے، وہی اوپر سے کسی کی اپروچ آئی اور بس سب چیز، سب کیس نکل گئے، ختم ہو گئے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو گیا، ایسے ہوتا ہے؟ یہ وہ والا کانسیپٹ قیامت کا نہیں ہے۔ ہم سفارشیں دنیا والی نہ سمجھیں۔ وہ سفارش کیسی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس دن جس کو چاہے گا اس کے لیے سفارش ہوگی، اور جس سے چاہے گا اس سے کہے گا کہ تم سفارش کرو، یعنی کرنے والا اور جس کے لیے کی جائے دونوں اللہ کے اذن سے ہوں گے۔ سمجھ آئی؟ دونوں اللہ کے اذن سے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جس کی ایک کو کوئی پسند ہے تو وہ کھڑا ہوگا اس کی سفارش شروع کر دے، نہیں۔ تو بیسیکلی ہوا تو یہی کہ جس کو اللہ بخشنا چاہے گا اس کے لیے کسی کو کھڑا کرے گا کہ تم سفارش کر دو، کیونکہ اللہ اس کو آنر دینا چاہتا ہے، سفارش کرنے والے کو اللہ آنر دینا چاہتا ہے کہ اس کی اہمیت لوگ اس کی طرف دیکھیں، اس کو ایک مقام دینا چاہتا ہے، اس کو عزت دینا چاہتا ہے لوگوں، اس لیے اس کو کھڑا کرے گا، ورنہ اللہ خود بھی بخش سکتا ہے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے کوئی کہے گا تو پھر اس نے بخشنا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو چاہے بخشے، جس کو چاہے عذاب دے۔ تو اس دن سفارش کوئی قبول نہیں کی جائے گی، اس کا مطلب یہی ہے۔ وہ شفاعت تو ایک صرف ایک پروٹوکول ہے، ادروائز ایسا نہیں ہے کہ کوئی کسی کو نکلوا لے، اور نہ ہی کسی سے کوئی بدلہ لیا جائے گا کہ یہ بدلہ میں نے دے دیا اس چیز کا، اس گناہ کا یہ بدلہ ہو گیا، اور نہ ہی کوئی مدد دیے جائیں گے کہ وہ ان کے کوئی سپاہی آ جائیں، کوئی کسی کے فوج لشکر آ جائیں ان کو بچانے کے لیے، کوئی کسی کے فینز آ جائیں، یہ کوئی میری فالوئنگ اتنی ہے فیس بک پہ، میرے تو فینز اتنے ہیں، میں تو پاپولر ہی اتنی ہوں، وہ ان کے لیے آ جائیں، کھڑے ہو جائیں ان کی مدد کرنے کے لیے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس دن سے ڈرو، یعنی سوچیں کہ جب یہ سارے سہارے ختم ہو جاتے ہیں، نہ کوئی اپروچ ہے، نہ کوئی کانٹیکٹس ہے، نہ کوئی پیسہ چل رہا ہے وہاں پہ، کہ کوئی پیسہ دے دیا تو بھائی چھوٹ گئے کہ کوئی میں اتنے پیسے دیتی ہوں میرے سے لے لو اور اس کا علاج کر دو۔ دنیا میں تو ایسے ہی کرتے ہیں نا، جب کسی مدد چاہیے ہوتی ہے، اچھا ہم کتنا چاہیے آپ کو، ہم اتنا آپ کے منہ مانگی ہم قیمت دیں گے، لیکن ہمیں اس چیز سے نجات ہو، وہ بدلہ بھی کچھ نہیں لیا جائے گا۔ جب یہی سہارے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں نا جن کی طرف ہم دیکھتے ہیں دنیا میں جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں۔ سوچیں ذرا، جسٹ امیجن فار اے سیکنڈ کہ سب سہارے ختم ہو گئے، نہ پیسہ چل رہا، نہ کانٹیکٹس چل رہے ہیں، ना कोई सिफारशी अप्रोच चल रही है, ना कोई मददगार आ रहे हैं, ना कोई बहन भाई माँ बाप खड़े हो रहे हैं मेरे लिए, तो फिर इंसान को क्या लगता है? अकेला अपना आप, एक अल्लाह है और एक मैं, बस हर चीज इनसिग्निफिकेंट हो जाती है, हर चीज खत्म हो जाती है। अल्लाह अकबर। एक मुकालमा जो है इमाम कुर्तुबी ने अपनी तफसीर में लिखा है, उन्होंने लिखा तो हक को छुपाने के ऊपर है, मगर इन सारी बातों को ही वो अहाता करता है, तो इसलिए मैं आपके सामने इस वक्त रखती हूँ। उन्होंने लिखा है कि देखो, हक को नहीं छुपाना चाहिए, कि इब्ने हाजिम जो थे ना रहमतुल्लाह अलैह, वो ताबई थे। ताबई का पता है कौन होता है? जिन्होंने कभी अपनी जिंदगी में सहाबा को देखा हो, किसी सहाबी की सोबत उनको मिली हो, उनको कहते हैं ताबई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से चले गए, तो सहाबा दुनिया में घूमे फिरे, जिन्होंने उनसे कभी फैज हासिल किया, जिन्होंने कभी उनकी सोबत ली, उनको ताबईन कहते हैं। तो अबू हाजिम ताबई थे और खलीफा उस वक्त सुलेमान बिन अब्दुल मलिक था। तो एक दफा खलीफा जो था वो मदीना पहुंचा और चंद रोज उसने कयाम किया, तो लोगों से उसने पूछा कि मदीना में अभी भी क्या कोई आदमी ऐसा है जिसको किसी सहाबी की सोहबत मिली हो? लोगों ने बताया हाँ, अबू हाजिम है। उसने कहा कि जाओ उनको लेकर आओ। जब वो तशरीफ लाए तो सुलेमान ने कहा, ए अबू हाजिम, ये क्या बेमुरव्वती है, क्या बेवफाई है? ने कहा कि मैंने क्या बेमुरव्वती बेवफाई की है? सुलेमान ने कहा, मदीना के सबसे मशहूर लोग मुझसे मिलने आए और आप नहीं आए मुझसे मिलने। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपको अल्लाह की पनाह में देता हूँ, इससे कि आप कोई ऐसी बात कहें जो वाकये के खिलाफ है, यानी ऐसी बात तो है ही नहीं, आज से पहले ना आप मुझसे वाकिफ थे, ना मैंने आपको कभी देखा था, ऐसे हालात में मैं खुद आपसे मिलने के लिए क्या आता, कोई इसका सवाल ही नहीं था। यानी इंसान उससे मिलने जाता है ना जिसे कोई शनासाई हो, ना मैं आपको जानता ना आप मुझे जानते, तो मैंने आपसे क्यों मिलने आना था? सुलेमान ने जवाब सुन के, इब्ने शहाब ज़ोहरी बहुत बड़े आलिम है ये, और उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कि हाँ, बात तो इन्होंने सही की है। इसके बाद सुलेमान ने बात बदली और उसने कुछ सवाल शुरू कर दिए। उसने कहा, अबू हाजिम, ये क्या बात है, हम मौत से घबराते हैं। अच्छा, ये बात इतनी जबरदस्त है ना, ये मुकालमा ही बड़ा प्यारा है, क्योंकि अबू देखें ताबईन का दौर भी गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा जमाना बेहतरीन है, मेरे बाद जो मेरे बाद आने वाले हैं और उसके बाद जो उनके बाद आने वाले, यानी सहाबा का और उसके बाद ताबईन का, तो ताबईन के अंदर भी बहुत अभी खुदा खौफी और बहुत यानी तकवा के आला पाए पे थे वो। तो ये सवाल हम बहुत सारे लोग करते हैं, हम सबके जहन में आते हैं, हम मौत से क्यों घबराते हैं? मौत का जिक्र सुनते ही आए आए आए, मौत का तो जिक्र भी ना करो, मनहूस बात का जिक्र ना करो। कुछ लोग तो इतना इससे परहेज करते हैं कि वो तो सुनना ही नहीं चाहते कभी, इसका जिक्र ही नहीं सुनना चाहते। तो उसने पूछा, यही जो हम सब शायद सवाल करें, कि मौत से हम क्यों घबराते हैं? तो अबू हाजिम कहते हैं, वजह ये है कि आपने अपनी आखरत को वीरान किया और दुनिया को आबाद किया, तो आबादी से वीराने में जाना अब आपको पसंद नहीं आ रहा। सुभान अल्लाह, कितना जबरदस्त जवाब है। सुलेमान ने माना कि हाँ, बात तो सही है। पूछा, कल अल्लाह के सामने हाजिरी कैसे होगी? फरमाया, नेक अमल करने वाला तो अल्लाह के सामने इस तरह जाएगा जैसे कोई मुसाफिर सफर से वापस अपने घर वालों के पास जाता है। सुभान अल्लाह। और बुरा अमल करने वाला इस तरह पेश होगा जैसे भागा हुआ गुलाम पकड़ के आका के पास हाजिर किया जाए। अब सोचना चाहिए कि हम इनमें से कौन से भागे हुए, अपने आका से दूर भाग रहे हैं और हमें आना नहीं है उसकी तरफ, और यहाँ पर वो है जैसे कोई मुसाफिर सफर से वापस अपने घर वालों के पास जाता है, तो खुश होता है ना जाके। सुलेमान ये सुन के रो पड़ा, कहने लगा, काश हमें पता हो कि अल्लाह ने हमारे लिए क्या आगे रखा हुआ। तो अबू हाजिम ने कहा, अपने आमाल को अल्लाह की किताब पे पेश करके देख लो, पता चल जाएगा। सो ट्रू, राइट? अपने आमाल को, यानी हम सब सोचते हैं ना, काश हमें पता चल जाए हमारा अंजाम क्या है वहां पे, ताकि हम फिर बेफिक्र हो जाए, तो कोई मुश्किल नहीं है। अपने आप को अल्लाह की किताब के आगे पेश करके देख लो, खुद रख लो अपने, ये आईना है ना अल्लाह की किताब, इसमें अपना अक्स देखो, क्या नजर आता है आपको, क्या नजर आता है? ये है ना, इसकी बेस पर अल्लाह ने फैसले करने हैं, तो इससे हमें पता चलेगा हम कहाँ खड़े हैं। अल्लाह अकबर। सुलेमान ने पूछा कि कुरान की किस आयत से पता चलेगा? फरमाया, इस आयत से कि नेक अमल करने वाले जन्नत की नेमतों में, और नाफरमान गुनाहगार दोजख में। इससे आपको पता चल जाएगा आप इनमें से कौन से में हो। तो सुलेमान ने कहा, अल्लाह की रहमत तो बड़ी है, बहुत बड़ी है। बस अक्सर इसी तरह अपने आप को इंसान बहलावा देता है ना, अल्लाह की रहमत तो बहुत बड़ी है, बस वो तो बदकारों पे भी हावी है। आप कह रहे हैं बदकार दोजख में जाएंगे, अल्लाह की रहमत तो बदकारों पे भी हावी है। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्ना रहमत अल्लाह करीब मिन अल मोहसिनीन, अल्लाह की रहमत तो करीब किन से है? एहसान करने वालों से, नेक अमल करने वालों से। बदकारों पे हावी की बात नहीं है, अल्लाह की रहमत नेक अमल करने वालों से करीब है। फिर काफी लंबा मुकालमा है। फिर एक बात और जो उसके अंदर आती, जो आपको बताने की है, उसने पूछा गया, मुसलमानों में से कौन शख्स अहमक है, बेवकूफ है? अबू हाजिम फरमाते हैं, वो आदमी जो अपने किसी भाई की उसके जुल्म में मदद करे, जिसका हासिल ये होगा कि उसने दूसरे की दुनिया बनाने के लिए अपना दीन बेच दिया, अपनी आखिरत खराब कर ली। यानी कितना बेवकूफ है, सबसे बेवकूफ वो है जो किसी के लिए, यानी कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके गुनाह में मदद की, उसका हासिल क्या हुआ? उसकी दुनिया बनाने के लिए अपनी आखिरत खराब कर ली, अपना दीन बेच दिया। समझ आई बात? मसलन आपको कोई गुनाह का काम कहता है, तो आप कहते हैं, नहीं नहीं फिर वो नाराज हो जाएगी ना, अगर मैं नहीं करूंगी तो नाराज हो जाएगी, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो नाराज होगी। अब वो काम गुनाह का है और आपको पता है का गलत काम है, सिर्फ उसकी नाराजगी से बचने के लिए, तो फिर अपने उसकी तो दुनिया दुरुस्त कर दी और अपना ही आखिरत खराब कर दी। इसके बाद सुलेमान ने पूछा, हमारे बारे में आपकी क्या राय है? अबू हाजिम ने फरमाया, मुझे इस सवाल से आप माफी रखें तो बेहतर है। सुलेमान ने कहा, नहीं नहीं आप जरूर बताएं, अब जरूर आप ये कहें। अबू हाजिम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपके आबाओ अजदाद ने तो तलवार के जोर पे लोगों पे मुसल्लत हो गए, और जबरदस्ती उनकी मर्जी के खिलाफ उन पर हुकूमत की, और बहुत सारे लोगों को कत्ल किया, और ये सब कुछ करने के बाद वो इस दुनिया से चले गए। काश आपको मालूम होता कि अब वो मरने के बाद क्या कहते हैं और उनको क्या कहा जाता है, काश ये अब आपको पता होता। आप जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे, आपको पता ना, बादशाह के खुशामदी भी होते हैं, उसके टोला भी होता है जो कि बादशाह को बड़ा राजी करना चाहता है। उसने कहा, ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये कितनी बुरी बात आपने की है। तो अबू हाजिम ने फरमाया, तुम गलत कहते हो, बुरी बात नहीं कही, बल्कि वो बात कही है जिसका हमें हुक्म है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उलमा से इस बात का अहद लिया है कि वो हक बात लोगों को बताएं, छुपाएं नहीं। लेकिन लोग क्या होता है, जब उनको हक बात बताई जाती है, गड़बड़ ना किया जाए, मसला ना हक बात बता दी जाए, तो लोग कितने नाराज हो जाते, लोग तो इस बात को बर्दाश्त ही नहीं करते, उस आलिम के पीछे पड़ जाते हैं, उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। लेकिन ये बात है कि वला तलबिसुल हक बिल बातिल व तख्तुमुल हक, हक को ना छुपाओ। सुलेमान ने फिर सवाल किया, अच्छा अब हमारे सही होने का क्या तरीका है फिर? अच्छा फिर अब ये तो हमारे अबाउजदाद ने कर ही दिया, लेकिन अब हम कैसे सही करें? फरमाया, तकब्बर छोड़ दो, आजी इख्तियार करो, हकूक वालों को उनके हकूक इंसाफ के साथ दो। सुलेमान ने कहा, अबू हाजिम क्या हो सकता है कि आप हमारे साथ रहें? आप यानी आप अब ऐसे किसी नेक बंदे को देख के इंसान का दिल चाहता है ना, ये साथ साथ ही रहे। फरमाया, खुदा की पनाह, यानी कि मैं नहीं ये कर सकता। सुलेमान ने पूछा, ये क्यों? फरमाया, इसलिए कि मुझे खतरा है कि मैं तुम्हारे माल दौलत इज्जत जाह की तरफ कुछ मायल हो जाऊं, जिसके नतीजे में मुझे अजाब भुगतना पड़े। सुबहान अल्लाह, ये ना हो कि मुझे अजाब भुगतना पड़े। फिर सुलेमान ने कहा, अच्छा आपको कोई जरूरत हो तो बताएं, ताकि हम उसको पूरा करें। खलीफा जो था तो उसने कहा, कोई जरूरत हो हमें बताएं, मैं कोई काम हो मुझे बताएं। जैसे होते हैं बड़े बड़े लोग, जब बड़ी अपनी करम नवाजियां करने चाहते हैं तो कहते हैं, कोई काम हो तो बताएं, हम आपकी क्या खिदमत करें। फरमाया, हाँ एक जरूरत है मेरी। बोला, क्या? कहने लगे, जहन्नुम से निजात दिला दो और जन्नत में दाखिल करा दो। सुलेमान ने कहा, ये तो मेरे अख्तियार में नहीं। फरमाया, फिर मुझे आपसे कोई जरूरत नहीं, आखिर में सुलेमान ने कहा, अच्छा मेरे लिए दुआ कर दे। तो उन्होंने दुआ की, अल्लाह अगर सुलेमान आपका पसंदीदा है तो उसके लिए दुनिया और आखरत की बेहतरी को आसान कर दे, और अगर वो आपका दुश्मन है तो इसके बाल पकड़कर अपनी मर्जी और अपने महबूब कामों की तरफ इसको ले आ। कितनी खैर की दुआ है ना। सुलेमान ने कहा मुझे कुछ वसीयत करें। इरशाद फरमाया कि मुख्तसर यह है कि अपने रब की अजमत का ख्याल रखो कि वो तुम्हें इस मकाम पर ना देखे जिससे उसने मना किया, और उस मकाम से गैर हाजिर ना पाए जिसकी तरफ आने का उसने हुक्म दिया। सुलेमान ने इस मजलिस से फारिग होने के बाद 100 दिनार हदीये के तौर पे अबू हाजिम के पास भेजे। अबू हाजिम ने एक खत के साथ इनको वापस कर दिया। खत में लिखा था, अगर ये 100 दिनार मेरी इन बातों का बदला है जो मैंने आपसे की है, यानी इसका मुआवजा है, तो मेरे नजदीक खून और खिंजीर का गोश्त इससे बेहतर, और अगर ये इसलिए भेजा कि बैतुल माल में मेरा हक भी है, मुझ जैसे तो और हजारों उलमा और दीन की खिदमत करने वाले पड़े हुए, अगर सबको आपने उतना ही दिया जितना मुझे भेजा है तो फिर ठीक है, फिर मैं ले सकता हूं, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह। ये वला तश्तरू बी आयाती समनन कलीला, कि अल्लाह की आयात को थोड़ी कीमत पे ना बेचो। अब देखे वो जब आप किसी की पसंद की बात करते हैं तो वो नजराने भी देते हैं, कभी तो तोहफे तहायफ की सूरत में भी देते हैं, कभी कोई चीजें देते, तो फिर उन्होंने वो भी नहीं एक्सेप्ट किया कि नहीं हदीये के तौर पे भी नहीं मुझे चाहिए, क्योंकि ये अगर आपने इन बातों का मुआवजा दिया मुझे कि मैंने अच्छी बातें आपसे की हैं, तो मैं इसका मुआवजा नहीं ले सकता, इसका बदला नहीं ले सकता। इसी बात के ऊपर बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो दर्स व तदरीस है, तालीम देना है, आगे सिखाना है, दीन का इल्म अल्लाह की आयात को सिखाना है, इसका आप फीस इसकी नहीं ले सकते, इसकी फीस लेना जायज नहीं है, क्योंकि ये भी आयात को बेचना है। हाँ मगर इसके बाद, क्योंकि पहले तो ऐसे होता था ना कि ऐसे तमाम उलमा के लिए बैतुल माल से ही उनकी वजीफा कायम होता था और उनके घर चलते थे, लेकिन अब जैसे जैसे दुनिया में चेंजेस आती गई, अब उन उलमा के लिए अपना घर चलाने का तो कोई और सोर्स नहीं, वो तो पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं बस। अब अगर वो सिर्फ पढ़ाएं और पढ़ें और उनके घर चलाने का कोई जरिया ही आमदन नहीं है, तो फिर वो कहाँ से खाएं, कहाँ से उनकी फैमिली खाएगी, क्या होगा उनका। तो अब इसलिए उलमा ने कहा हाँ ठीक है, फिर आप जायज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उसको फिक्स ना करेंगे, इतनी फीस मुझे दोगे तो फिर पढ़ोगे, और अगर इतनी नहीं देते तो फिर कोई नहीं पढ़ोगे, ये नहीं आप कर सकते, फिर भी इसको ओपन रखें, और इसको भी दुनिया बनाने का जरिया ना बना ले कि इतनी भारी फीसें लें कि उससे अपनी जायदादें बना लें, फिर भी ये ना करें। यानी इतना इसको कंडेम किया गया कि ये जायज नहीं है किसी तरह से। तो अब इसलिए इस चीज की रुख्सत जो मिलती है, एक्सेप्शन मिलती है, वो फिर इसी वजह से कि फिर तो कोई भी दीन ना पढ़ेगा ना पढ़ाएगा, क्योंकि वो फिर कहेंगे फिर हम तो नौकरियां करें, हम घर का अपना खर्चा कैसे चलाएंगे। इसलिए फिर उन्होंने कहा कि ये जायज करार दिया इसको, अदरवाइज फिर कहा कि वैसे आपको जरूरत ना हो तो मत लो, अल्लाह की आयात को मत बेचो, कि जब भी ये कारोबार बनेगा ना, जब भी फीसें होंगी कारोबार बनेगा, तो फिर क्या होगा, ओहो अब अगर मैंने एक की भी खिलाफ बात की तो ये चली जाएगी मेरे से, तो मेरी फीस का क्या होगा, जितने ज्यादा लोग आएंगे उतनी फीस ज्यादा मिलेगी, और जितनी ज्यादा फीस मिलेगी उतना ही मेरा तो फायदा होगा, तो फिर ये कारोबार बनने लगता, इसलिए इससे मना किया गया, इसमें कोई खैर नहीं होती। फिर अल्लाह ताला हमें इन आयात को सही समझने की और इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुब्बे जा से महफूज रखे, अल्लाह ताला इस फितने से हम सबको बचा के रखे। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। ये तिलावत सुनिए।
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.